मुकेश कुमार की आवाज़ में बीए सेकेंड बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान पेपर सेकेंड राजनीतिक सिद्धांत अध्याय कांग्रेस में उदारवाद का योग। उदारवादियों की आरंभिक नीतियां उद्देश्यों का वर्णन करें तथा राष्ट्रीय राजनीति पर उदारवादियों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। मोटे तौर पर 1885 से 1950 के युग को कांग्रेस की राजनीति में उदारवाद का चरण कहते हैं और इस चरण में राजनीतिक आंदोलन में मुख्यतः उदारवादी मार्ग ही अपनाया। अपने प्रारंभिक 20 वर्ष के काल में उदारवादी कांग्रेस ने कभी भी दो पंक्ति का प्रस्ताव भी स्वशासन के लिए पारित नहीं किया। इसके विपरीत हर अधिवेशन में प्रस्तावों के माध्यम से मलिका विक्टोरिया तथा उसके उत्तराधिकारी सम्राट एडवर्ड के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए कांग्रेसी नेतृत्व अपने को साम्राज्य की राजभक्त प्रजा घोषित करता रहा। इस संबंध में बदरुद्दीन तैयब जी का यह कथन काबिले गौर है, जिसमें उन्होंने कहा, महारानी की करोड़ों प्रजा में से कोई अन्य लोग इतने राजभक्त नहीं है जितने भारतीय शिक्षित लोग। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस पर जिन लोगों का अधिपत्य था, उन प्रमुख नेताओं का सामाजिक उद्गम, उनका प्रशिक्षण, उनकी कमजोरियां, उन्हें सभी ने इन्हें प्रार्थना याचना तथा प्रतिवाद करने की नीतियों को अपनाने पर बाध्य किया। उनकी नीति ब्रिटिश राज के सहयोगी रुख अपनाने की थी, न कि उनका विरोध करने की। इन शिक्षित मध्यम वर्ग को उपाधियों तथा सरकारी सेवाओं इत्यादि से बहुत लगाव था। इनमें से अधिकतर प्रतिनिधि तो अंग्रेजी वेशभूषा तथा रहन सहन का ही प्रयोग करते थे और शिक्षा तथा संस्कृति के कारण जनसाधारण से अलग थलग थे ही। कांग्रेस में सम्मिलित होने वाले अधिकतम प्रतिनिधि नगरों से ही आते थे और उनका जनसाधारण से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। इस बारे में तो एक बार फिरोज शाह मेहता ने इंगित किया था, वास्तव में कांग्रेस जनसाधारण की आवाज़ नहीं है, परंतु यह सभी का कर्तव्य है कि वह जनसाधारण की शिकायतों की व्याख्या करे तथा उसके निवारण के लिए सुझाव दे। इस बारे में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने भी कहा, कांग्रेसी न तो भारतीय समाज के रईसों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न उनका विशेष संपर्क या सहानुभूति जनसंख्या के विराट अंश से है। मुख्य रूप से अपनी शिक्षा की पृष्ठभूमि के कारण कांग्रेस के नेता, विशेषकर पुराने पीढ़ी के लोग, अंग्रेजी इतिहास तथा संस्कृति की बहुत सराहना करते थे और प्रायः भारत के अंग्रेजी संबंधों को दैवी कृपा कहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था, आज केवल अंग्रेज ही व्यवस्था बनाए रखने में सफल हैं और व्यवस्था के बिना कोई उन्नति संभव नहीं। प्रारंभिक कांग्रेसी नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों के आने से पहले देश में अराजकता तथा अव्यवस्था थी तथा अंग्रेज तुरंत चले जाते हैं तो फिर से अराजकता तथा अव्यवस्था फैल जाएगी। इस प्रकार अंग्रेजी राज का बना रहना भारतीय जनता के हित में है। इस काल के नेतृत्व का यह भी विश्वास था कि अंग्रेजों से ज्यादा ईमानदार तथा न्यायप्रिय जाति विश्व में नहीं है तथा यदि एक बार उनको यह विश्वास दिला दिया जाए कि भारत में कोई कार्य गलत या अन्यायपूर्ण हो रहा है तो वह स्वयं ही उसको सुधार लेंगे। उदारवादियों का यह मानना था कि किसी भी राजनीतिक अधिकार को पाने से पहले हमें अपने को उसके योग्य सिद्ध करना चाहिए। उसके अनुसार भारतीय स्वतंत्रता पाने तथा शासन चलाने के योग्य नहीं थे, अतः उनको उनकी मांग नहीं करनी चाहिए। उपयुक्त सिद्धांतों से निर्देशित होकर उदारवादी कांग्रेस के नेता ने समय समय पर जो मांगे सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की, उनमें प्रमुख थी विधान परिषदों का विस्तार किया जाना चाहिए, उनमें और अधिकार संपन्न बनाया जाए, परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व का अनुपात बढ़ाया जाए, भारतीय परिषद भंग किया जाए, भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य का स्थान दिया जाए, सिविल सर्विस में परीक्षा में बैठने की आयु बढ़ाई जाए, तैयार परीक्षा भारत तथा इंग्लैंड दोनों जगहों पर ली जाए, आर्म्स एक्ट में सेडिशन एक्ट जैसे दमनकारी कानून समाप्त किए जाएं, सरकारी नौकरियों में भारतीयों और यूरोपियनों को समान महत्व प्रदान किया जाए, अंग्रेजों की न्यायप्रियता तथा भारतीयों में अक्षमता में विश्वास उदारवाद को राजभक्त तो बना सका किंतु इस तथ्य को उसकी आंखों से उजल नहीं कर सका कि ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। विभिन्न स्रोतों से यहाँ का धन निकलकर इंग्लैंड ले जाया जा रहा है तथा संपदा की निकासी की यह प्रक्रिया है भारत में बढ़ती हुई गरीबी तथा भुखमरी के लिए उत्तरदायी है। भारत के प्रति अंग्रेजों की आर्थिक नीति के बारे में एक अंग्रेज विद्वान जॉन सुलिवन का कहना था, हमारी आर्थिक प्रणाली एक स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे की सभी अच्छी वस्तुओं को सोख कर उन्हें टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। लूट की इस नीति का विश्लेषण दादा भाई नरोजी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉवर्टी एंड ब्रिटिश अनरूल इन इंडिया में किया। इस विश्लेषण को उन्होंने धन निकासी सिद्धांत का नाम दिया। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की जा रही औपनिवेशिक लूट का यह विश्लेषण राष्ट्रवाद के उदारवादी योग की मुख्य देन है। इस संबंध में दादा भाई नरोजी ने कहा है, यह एक ऐसे लुटे हुए देश की अवस्था है जहां लुटेरा लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल रहा है। देश की निर्धनता को दूर करने के लिए उदारवादियों ने निम्न मांग रखी, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए, विदेशी पूंजी की प्रतिद्वंद्वता से भारतीय उद्योग की रक्षा की जाए, टैक्स व आर्थिक प्रणालियों की नीतियों को भारतीय हित के अनुकूल बनाया जाए, भूकर में कमी की जाए तथा भूमि बंदोबस्त उदार हो, औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा का विकास किया जाए। इन मांगों की पूर्ति के लिए उदारवादियों द्वारा जिस कार्य पद्धति को अपनाया गया वह उनके शब्दों में क्रमिक विकास तथा संविधानवाद की पद्धति थी। उदारवादियों की आलोचना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अतिवादियों अथवा उग्र राष्ट्रवादियों ने उदारवादी की नीतियों की कटु आलोचना की है। इस नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है। उदारवादियों की आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने लिखा है, अधिक से अधिक हम इसे अवसरवाद कह सकते हैं। इसके कार्यों तथा नीतियों से देशद्रोह तथा पाखंड को बढ़ावा मिला है। इससे कुछ लोगों को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का अवसर मिला है। नर्मदल बारों के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह था कि वे क्राउन के राजभक्त थे। नर्मदल के नेता यह विश्वास करते थे कि भारत में कुछ उन आधारभूत तत्वों की कमी है जिसके कारण एक राष्ट्र बनता है और अंग्रेज ही इसे एक इकाई बनाए हुए हैं। अतः उनकी देशभक्ति की यह मांग थी कि अंग्रेजों के राज में राजभक्त रहें तथा यदि अंग्रेज चली जाती है तो हम वह भारत के हित में नहीं होगा। इस संबंध में एक उदारवादी कांग्रेस नेता बी सी बाल ने कहा था, मैं अंग्रेजों का राजभक्त हूँ क्योंकि मेरे लिए अंग्रेज के प्रति राजभक्ति तथा अपने लोगों तथा देश के प्रति राजभक्ति एक ही बात है। मैं अंग्रेजी सरकार का राजभक्त इसलिए हूं कि मैं स्वशासन को प्यार करता हूं। उदारवादियों की नीतियों का आलोचना करते हुए मार्क्सवादी भी दोनों का मत है कि नरम दल के नेताओं का दृष्टिकोण बुजुर्वा था तथा वे यह चाहते थे कि भारत का विकास भी बुजुर्वा पद्धति के अनुरूप हो। प्रारंभ में उदारवादियों के प्रभाव के कारण कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किए तथा उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सहयोगात्मक रूप अपनाते हुए जो मांगे रखी उनमें से किसी एक पर भी सरकार के सही नजरिया नहीं अपनाया। इस संबंध में उदारवादियों के नीतियों की आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने कहा है, 20 वर्षों तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों का मूल्यांकन। उदारवादियों द्वारा रखी गई मांगों में चाहे जो भी कमियां नहीं हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय संस्था थी। इनकी मांगों तथा कार्यक्रमों में कोई ऐसी बात नहीं थी जो किसी वर्ग विशेष के हितों के विरुद्ध हो। इस तरह उदारवादी कांग्रेस ने कुछ भी हासिल नहीं किया, परंतु भारत के मुक्ति संघर्ष में इसका एक विशेष स्थान है। प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र ने कहा है, 1805 से 1905 का समय भारतीय राष्ट्रीयता की बुवाई का समय था तथा प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने अपने उदारवादी दृष्टिकोण से बीजों को अच्छी तरह से और गहन बोया। उदारवादियों के प्रति सरकार का रवैया। कुछ लोग भले ही उदारवादियों की आलोचना सरकार के पिछलग्गों के रूप में तथा कांग्रेस की आलोचना एक सरकारी संगठन के रूप में करते रहे, परंतु यह तथ्य है कि प्रारंभ में 20 वर्षों में सरकार की नीति कांग्रेस के प्रति तटस्थता व उपेक्षा से आरंभ होकर खुले विरोध तक पहुंच गई। प्रारंभ में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को एक तटस्थ भाव रखा, परंतु ज्यों-ज्यों कांग्रेस का स्वर सरकार के विरोध में मुखरित होता गया, डफरिन तथा ब्रिटिश अधिकारियों की सोच बदलती गई। तत्काल वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के विरोधी स्वर उठाने पर कहा था, चलना जिसे सिखाया हमने संभल संभल के, चलते हैं आज वही तेवर बदल बदल के। 1887 के उपरांत सरकार का कांग्रेस विरोधी रूप खुलकर सामने आ गया। इलाहाबाद अधिवेशन में सरकार की तरफ से रुकावटें डाली गई। 1888 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसियों की आलोचना करते हुए ऐसे अति सूक्ष्म अल्पतंत्र से कि जो अपने अलावा किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। 1890 में सरकारी अधिकारियों को कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि ही नहीं दर्शकों के तौर पर उपस्थित होने पर भी रोक दिया गया। सरकार इतने से ही संतुष्ट नहीं रही, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उसने फूट डालो और राजकरो की नीति को अपनाया। भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रखने का प्रयास किया गया। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद को कांग्रेस के समांतर एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय देशभक्त मंडल का गठन करने में सहायता प्रदान की गई। उर्दू व हिंदी का सवाल, गोरक्षा आंदोलन आदि को कांग्रेस के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। लॉर्ड कर्जे ने कहा था, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरे यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं अपनी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। परंतु सरकार का यह सारा दमनात्मक प्रयास कांग्रेस के आगे बढ़ते कदमों को रोक नहीं सका और कांग्रेस हमेशा प्रगतिशील पथ पर बढ़ती रही।